पेश हैं आज के मुख्य समाचार वैशाली जैन के साथ। नोवावैक्स कोविड 19 टीका ऑस्ट्रेलिया में प्रयोग के लिए पूरी तरह से मंजूर। भारत में बढ़ रहे हैं सक्रिय कोरोना मामले। और फुटबॉल में महिला एशिया कप में मिला मेजबान भारत को एक बड़ा झटका। और अब खबरें विस्तार से। न्यू साउथ वेल्स सरकार अपने निवासियों को आश्वस्त करने में लगी है कि बच्चों को स्कूल वापस लौटना सुरक्षित होगा। कुछ अभिभावक अपने बच्चों की सप्ताह में दो बार रैपिड एंटीजन जांच होने के नियम से चिंतित हैं। प्रीमियर डोमिनिक पेरोटे का कहना है कि वे समझते हैं कि ये निर्णय कुछ अभिभावकों को परेशान कर सकता है, लेकिन यही सही तरीका है।
This is all about instilling confidence in our parents, in our children. I know many are anxious, but we believe the plan that we have in place, alongside the Victorian government, is one that works, one that is ready. We've invested significantly in it, and we're in a position, unlike other jurisdictions around the country, that can actually apply these rapid antigen tests because we went out early and resourced them.
New South Wales mein aaj 24 और कोरोना संबंधी मृत्यु दर्ज की गई है। राज्य में 15,091 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। 2,816 लोग अस्पताल में इस बीमारी के चलते भर्ती हैं, जिनमें से 196 गहन चिकित्सा केंद्र में देखभाल पा रहे हैं। उधर विक्टोरिया में निवासियों से आग्रह किया जा रहा है कि वे बूस्टर खुराकें अवश्य लें। राज्य में 17 कोरोना संबंधी मृत्यु और 11,695 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। फिलहाल राज्य में 998 कोरोना मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं और 119 मरीज गहन चिकित्सा केंद्र में देखभाल पा रहे हैं। प्रीमियर डैनियल एंड्रूज ने अपने वक्तव्य में लोगों को बूस्टर खुराक लेने के लिए प्रोत्साहित किया है।
Nothing's more important when it comes to protecting you, the people you love, and the people that we all count on, our nurses, our ambos, and our doctors, the whole team across our health system. Nothing's more important for all of those reasons than getting a third dose.
वहीं क्वींसलैंड में संवेदनशील स्वास्थ्य वाले व्यक्तियों से आग्रह किया जा रहा है कि वे मौजूदा ओमिक्रॉन की लहर में अतिरिक्त सावधानी बरतें। राज्य में 878 कोरोना मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 50 गहन चिकित्सा केंद्र में देखभाल पा रहे हैं। आज सामने आए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में राज्य में 10,212 नए कोरोना मामले और 13 मृत्यु दर्ज की गई हैं। प्रीमियर अनास्तासिया पलाशे का कहना है कि राज्य के लिए अगले कुछ हफ्ते बेहद संवेदनशील हैं।
My message is to the vulnerable members in our community, those elderly senior residents, about minimizing your movements. And as I said, perfectly okay to go and do your shopping, perfectly okay to go and visit your family, but please avoid mixing in crowds just over the next couple of weeks.
दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी में 756 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। वहीं तस्मानिया में 41 कोरोना मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। राज्य में 619 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। उधर नोवावैक्स का कोरोना रोधी टीका ऑस्ट्रेलिया में प्रयोग के लिए पूर्ण रूप से स्वीकृत कर लिया गया है। पिछले ही हफ्ते दवा नियामक थेरेप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको आंशिक मंजूरी दी थी। फेडरल स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हंट का कहना है कि यह टीका 21 फरवरी से उपलब्ध हो जाएगा।
We have received the second green light from Otago in relation to the Novavax vaccine. I've spoken with the company both last week and this morning amongst many conversations, and we will be able to commence that program in the week of the 21st of February.
रैपिड एंटीजन टेस्ट किटों की कमी की वजह से आज से लागू होने वाली रैपिड एंटीजन टेस्ट कंसेशन स्कीम पर असर पड़ सकता है। 6 मिलियन से अधिक लोग, जिनमें पेंशन पाने वाले व्यक्ति, वेटरन सैनिक, कम आय वाले व्यक्ति भी शामिल हैं, वे अब 3 महीने के अंदर अंदर किसी भी फार्मेसी से 10 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट तक मुफ्त ले सकते हैं। फार्मेसी गिल्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष ट्रेंट टूमी ने 9 नेटवर्क से कहा है कि हालांकि यह स्कीम अच्छी है, पर हर फार्मेसी के पास इस स्कीम के लिए पर्याप्त किटें नहीं होंगी।
We will have enough over the course of the program, but we don't have enough today. And so there are 6,000 community pharmacies in Australia, and 804 pharmacies went live this morning. So that's nationwide. There are pharmacies in every state and territory that will go live today. But 804 pharmacies out of 6,000 means simply the majority of pharmacies will not be going live.
उधर प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का WeChat अकाउंट हैक कर लिया गया है। चीन के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर श्री मॉरिसन के पेज को हैक करके उसे बीजिंग समर्थी बना दिया गया है। इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री के पेज का नाम ऑस्ट्रेलियन चाइनीज न्यू लाइफ कर दिया गया था, जबकि प्रधानमंत्री की टीम का कहना है कि वे पिछले जुलाई से इस अकाउंट को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। उधर रेडक्रॉस ने ब्लैक समर बुशफायर के दौरान एकत्र हुई सहायता धनराशि पर एक रिपोर्ट जारी की है। 2019-20 की ग्रीष्म ऋतु में हुई इन बुशफायर में 34 लोग मारे गए थे। इस आग में 18 मिलियन हेक्टेयर भूमि जलकर राख हो गई थी, जबकि करीब 5,900 बिल्डिंगें, जिनमें करीब 2,800 घर शामिल हैं, भी ध्वस्त हो गए थे। रेडक्रॉस द्वारा इस आपदा के लिए करीब $242 मिलियन एकत्र किए गए थे। करीब 6,000 लोगों ने पुनर्निर्माण, आपातकालीन सेवाओं और अंतिम क्रियाओं के लिए ग्रांट दी थी। रेडक्रॉस नेशनल रिकवरी कोऑर्डिनेटर शोना विटन कहती हैं कि आपदाओं के दूरगामी प्रभाव होते हैं।
We often have quite a cross section of communities who experience impacts by disasters. But you know, the additional support grant really shows that the people who are perhaps more vulnerable to begin with do tend to suffer more after disasters. And that was the intention of the additional support grant, which really was the focus of the end of our distribution of funds over the last 6 months.
और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका ने यूक्रेन में अपने दूतावास के सभी कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने परिवारों सहित यूक्रेन से निकल जाएं। यूक्रेनियाई बॉर्डर पर लाखों रूसी सैनिक तैनात कर दिए गए हैं और ऐसी आशंकाएं जताई गई हैं कि रूस यूक्रेन पर हमला बोल सकता है। अमेरिका ने दूसरी तरफ कहा है कि अगर रूस ने जरा भी और सेना बॉर्डर पर बढ़ाई तो अमेरिका भी चुप नहीं रहेगा। उधर बेल्जियम में कोरोना टीकों और प्रतिबंधों के खिलाफ प्रदर्शन जारी हैं। देश की राजधानी ब्रसल्स में रविवार को हजारों लोग एकत्र हुए, जहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। एक प्रदर्शनकारी जो अपना नाम स्किनी बताते हैं, कहते हैं कि इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए यूरोप भर से लोग आए थे।
It's an international manifestation, so they're coming people from Holland, from Germany, from France, from Italy, from Poland. There are 15 buses here only from Poland. There were 1,500 people here today. So, says enough, eh? Everybody around Europe is sick of the measures that the government takes against us. They're taking away our rights and freedom.
और अब खबरें भारत से। भारत में कोरोना के दैनिक मामलों में कल के मुकाबले थोड़ी कमी आई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,06,064 मामले दर्ज किए गए हैं। देश में कोरोना के दैनिक मामलों में ज़रूर मामूली कमी दर्ज की गई है, लेकिन सक्रिय मामलों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 22,49,335 हो गई है। साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या कुल मामलों के 5.69% तक पहुंच गई है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में आज उस याचिका पर सुनवाई है जिसमें हजारों गैर लाभकारी संस्थाओं यानी एनजीओ को विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए आवश्यक FCRA लाइसेंस को नवीनीकृत ना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती दी गई थी। ये याचिका अमेरिका स्थित एक गैर सरकारी संगठन ग्लोबल पीस इनिशिएटिव ने दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि FCRA लाइसेंस रद्द करने से COVID-19 राहत प्रयासों पर असर पड़ सकता है, क्योंकि देश संक्रमण की तीसरी लहर से जूझ रहा है, जबकि इन 6,000 एनजीओ ने अब तक लाखों भारतीयों की मदद की है। याचिका में मदर टेरेसा द्वारा शुरू किए गए मिशनरीज ऑफ चैरिटी का भी जिक्र है। हालांकि केंद्र सरकार ने 6 जनवरी को इस संस्था के FCRA लाइसेंस को फिर नवीनीकृत कर दिया था। और अब डॉलर का हाल। आज यानी सोमवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 53.39 रुपए और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 72 सेंट्स थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। फुटबॉल में महिला एशिया कप में मेजबान भारत को एक बड़ा झटका लगा है। कोरोना के प्रकोप के चलते मेजबान भारत प्रतिस्पर्धा के बाहर हो गया है। भारत की महिला टीम में कई खिलाड़ियों के कोरोना संक्रमित होने की वजह से वे ग्रुप ए की स्पर्धा में ताइवान के सामने खेलने के लिए प्रस्तुत नहीं हो सकी थी। नियम के अनुसार कोच को 13 खिलाड़ियों का स्क्वाड मैच के दिन के लिए नामित करना होता है। भारत ऐन समय पर ऐसा करने में असमर्थ रहा था, जिसके चलते रविवार का मैच रद्द होना पड़ा था और टीम को भी स्पर्धा से बाहर होना पड़ा था। और अंत में एक नजर कल यानी मंगलवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल धूप छांव का मौसम रहेगा। यहां अधिकतम तापमान 32 जबकि न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में उमस के साथ बारिश की आशंका है। यहां अधिकतम तापमान 30 जबकि न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में उमस के साथ बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 34 जबकि न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में धूप छांव का मौसम है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री जबकि न्यूनतम 14 डिग्री रह सकता है। सिडनी में भी कल बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 27 जबकि न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ब्रिस्बेन में धूप छांव के मौसम का अनुमान लगाया जा रहा है। अधिकतम तापमान 31 जबकि न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। डार्विन में कल बरसात के साथ तेज तूफान की आशंका जताई जा रही है। अधिकतम तापमान 32 जबकि न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल धूप छांव का मौसम रहेगा। दिल्ली का अधिकतम तापमान 17 जबकि न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।